फकत ये जो बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री है 2002 गुजरात राइड्स पे, वो एक जगह पे जो उन्होंने लगाई हुई थी उसको जाके ये देख रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमको हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग ASIO उनको मैं कहूंगा कि ये कोई भी अगर जो है थ्रेट्स हैं सिख कम्युनिटी को यहां पर उनको आइडेंटिफाई करें, जिसका जवाब सिक्योरिटी एजेंसीज ने दिया कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई इस तरह का नहीं है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया कॉन्स्टेंटली जो है ब्रीच कर रहा है इंटरनेशनल लॉज की और ये ऑफेंड करते हैं ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को, अगर और अगर इस तरह की कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर होएगी तो उसके लिए फिर कनाडा को बहुत ज्यादा अपने टाइज इंडिया के साथ देखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर फिर ये जो हमारे कैनेडियन वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत ज्यादा आप ल्यूक्रेटिव ट्रेड डील्स इंडिया के साथ करके उसको खुश करने की कोशिश करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुल्क में जो है वो कोई इस तरह का गलत काम हो। तो उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम सिख कम्युनिटी के साथ जो है जो कि मोस्ट विजिबल टारगेट ऑफ एक्सट्रीम पोलिटिकल वायलेंस है दुनिया में, उसके साथ हम ऑस्ट्रेलिया में खड़े हुए हैं। तो ये आज उन्होंने काफी सख्त बातें की। एक रिपोर्ट आई है जी ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट सर्वे, और इसके अंदर कहा गया है कि जो OECD कंट्रीज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मैथ्स एंड रीडिंग एंड जो साइंस है उसके जो यानी कि जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो बेतहाशा नूज डाइव कर गई है, यानी कि बेतहाशा नीचे आ गई है और एवरेज इंटरनेशनल मैथ स्कोर जो है वो गिरा है 15 पॉइंट से सिंस ये टेस्ट जो है स्टार्ट हुए थे 2018 में। ये जो है हर 3 साल के बाद ये रिपोर्ट निकालती है और इनकी रिपोर्ट जो होती है वो ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसको के OECD कंट्रीज कहते हैं, जिसमें के वो स्टूडेंट्स लेते हैं 15 एंड बिलो और 81 कंट्रीज के ऊपर ये सारी असेसमेंट्स निकालते हैं। इस दफा उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा ये चीजें नीचे आती जा रही हैं और इसी को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ दिन पहले $190 बिलियन दिए थे यूएस कांग्रेस से अप्रूवल करा के कि ये जो हमारी रीडिंग राइटिंग और मैथ्स बहुत नीचे आती जा रही है इसको इंप्रूव करें। एजुकेशन सेक्रेटरी मिगुल कैडोना जो थे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेदरलैंड्स, नॉर्वे और पोलैंड जो है उसके अंदर बहुत लो मैथ्स की अचीवमेंट है, इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के अंदर तो इनसे भी लो यूरोपियन कंट्रीज के अमंगस्ट जो है वो मैथ्स और रीडिंग राइटिंग के स्कोर्स हैं। वो कहते हैं जी कि इसमें तो फिर जो है साइंस भी जो है अगर शामिल की जाए तो ये कंट्रीज और भी नीचे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी एशियन स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने यूरोपियन पीयर से, जिसमें के टॉप के ऊपर जो कंट्री है वो सिंगापुर है। सिंगापुर के बच्चे बेइंतहा काबिल हैं साइंस में, मैथ्स में और रीडिंग और राइटिंग में, और उसके बाद फिर आता है मकाओ, फिर ताइवान, फिर हांगकांग, फिर जापान एंड फिर साउथ कोरिया। तो वैसे ही आज मैं ये जब रिपोर्ट पढ़ी थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंडिया का इसमें नाम नहीं है तो या चाइना का तो बड़े, क्योंकि वो भी बड़े मेहनती हैं दोनों बच्चे मुल्कों के, तो बहरहाल उसका नाम नहीं है। हंगरी की जो रूलिंग पार्टी है उसने जनाब आज एक जो है प्रपोजल सबमिट किया है पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि उस वक्त तक यूक्रेन का एक्सेशन ना किया जाए यूरोपियन यूनियन में जब तक के ये सारे जो हमें नजर आ रहा है स्टेप्स ये पूरे कर लें, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन की है बुडापेस्ट में उसमें कहा है कि किसी प्रेशर को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट वीक जो ब्रसल्स के अंदर EU की बड़ी क्रूशियल समिट होने वाली है, इसमें बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने कहा कि EU अपनी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड उसको रखनी चाहिए और परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, और जो कंडीशंस आज यूक्रेन में हैं वो इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने EU लीडर्स को कहा कि पहले आप असेस करें कि इसके जो हैं क्या ये इनकी पॉलिसीज प्रॉपर हैं जो कि मैच करती हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, जैसे कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज और कोहेसिव पॉलिसीज जो हैं वो क्या ब्लॉक की पॉलिसीज से मिलती हैं कि नहीं। इसी सिलसिले में अब वो उनकी मुलाकातें जो हैं विक्टर ऑर्बन साहब की फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों से भी होगी कल ये जा रहे हैं पेरिस, और वहां पे वो कहते हैं जी कि मैं डिस्कस करूंगा एक तो यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट जो है यूक्रेन के लिए और इसराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए भी। तो जनाब ये जो हैं बातें जरा थोड़ी यूरोपियन यूनियन के अंदर टेंशन पैदा कर रही है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने आज रिपोर्टर्स को बताया है कि हम यूएस कांग्रेस को कह रहे हैं कि जो अंकरा को आपने F-16 देने हैं उसको आप दें इससे पहले कि तुर्की की पार्लियामेंट जो है वो रेटिफाई करे स्वीडन का नेटो का मेंबरशिप। उन्होंने कहा जी कि मेरी बातें बहुत सारी जो हैं इस सिलसिले में अमेरिकन प्रेसिडेंट, बाकी यूरोपियन यूनियन में जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं उनके साथ हुई हैं, खासतौर पे मैंने अमेरिका को कहा है कि इट शुड पास F-16 सेल्स टू तुर्की ताकि हम स्टेप्स ले सकें ये इसके लिए स्वीडन की रेटिफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा जी कि अभी तक अनक्लियर है कि यूएस कांग्रेस जो है वो इस सिलसिले में आगे बढ़ेगी नहीं या नहीं, हालांकि बाइडन साहब जो हैं उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि हमको F-16 बेचने चाहिए अंकरा को। अंकरा कहता है जी कि ये तमाम का तमाम इशू जो है जो स्वीडन की बिड का है नेटो के साथ, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। एर्दोगान साहब ने कहा जी कि मैंने वैसे ये प्रपोजल जो है अपनी पार्लियामेंट को भेजा है लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक उसको जो है अप्रूवल नहीं दी है, और इसके अलावा स्वीडन जो है उसने भी प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए हैं कर्डिश आर्म्ड ग्रुप्स के अगेंस्ट, और अभी तक कर्डिश वर्कर्स पार्टी जो है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाइयां उन्होंने नहीं की हैं, और इन सब लोगों को तुर्की जो है वो टेररिस्ट कहता है। नेटो जो है वो बहुत ज्यादा तुर्की के साथ नाराज है क्योंकि वो कहता है जी कि आप बिलावजह के रोड़े अटका रहे हैं। आज अर्दोगान साहब ने इसको क्लियर किया कि ये रोड़े नहीं है, हमारी कुछ डिमांड्स हैं और आपकी कुछ डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है ये कदम लेने पड़ेंगे और फिर हम जो है आपकी डिमांड्स को भी देखेंगे। इसके अलावा जो है तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब, उनकी अब मुलाकातें जो हैं कल हो सकती हैं ग्रीक्स के जो हैं हेड ऑफ द स्टेट उनके साथ। कल वो जा रहे हैं एथेंस में और वो कहते हैं जी कि यहां पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी वो साइन कर सकते हैं, जैसे कि एवरोस रिवर जो है जो कि एक ब्रिज बनाना चाहते हैं उसके ऊपर, और ट्रेड के, टूरिज्म के और बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको पता ही है कि तुर्की और ग्रीस के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा बड़े अरसे से चल रहा है काफी सारी चीजों के ऊपर, खासतौर पर साइप्रस पे और जो चीजों पर। लेकिन वो कहते हैं जी कि ये जाके कल जो है इन चीजों को हल करने की कोशिश करेंगे। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ग्रिल एंड चिक। ग्रिल एंड चिक जो है अब उसकी नई ब्रांच ब्रैम्पटन के बाद मिसिसागा में भी खुल गई है। ये हैं 3525 प्लैटिनम ड्राइव के ऊपर, तो अगर आपको इनके साथ ऑर्डर डालना है तो आप दोनों इनकी लोकेशंस पे ब्रैम्पटन में भी मिसिसागा में डाल सकते हैं। इनका नंबर है मिसिसागा में 9056062345। इसके अलावा जनाब नान एंड कबोब का नंबर है 4162858191। ये भी जो है इनकी भी नई लोकेशन है, ये 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 पे हैं, तो अगर आपको इनके साथ कोई ऑर्डर डालने हैं नान कबोब के साथ तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ओंटारियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट, वो उनके बारे में भी वो कहते हैं जी कि बहुत जबरदस्त खाना होता है, और पहले ये थे यहाँ पे मिसिसागा में, अब ये चले गए हैं ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, और अगर आपको इनको ऑर्डर डालना है तो आप डाल सकते हैं 9052262294 के ऊपर। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर आज कुछ हल्की हल्की इस सिलसिले में बात हुई है, मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा ना हवा दी है ना मीडिया के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आई है। पाकिस्तान के अंदर कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स आए हुए हैं जो कि कुछ लग तो यही रहा है कि कुछ सीक्रेट मीटिंग्स पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जूलियट वैलेस नोएज जो हैं वो पहुंची हुई हैं पाकिस्तान के अंदर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स जो कि एलिजिबल हैं यूएस में माइग्रेशन करने के लिए। अफगान गवर्नमेंट बहुत दिनों से पाकिस्तान को कह रही थी, जिस वक्त से वो कह रहे थे कि भाई आप जो है हमको ना जाने दें पाकिस्तान से, और यूएसए के को भी वो जोर दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान हमको निकाल रहा है तो आप हमको लें, जिसमें कि यूएसए में काफी जो है वो जलसे वगैरह भी निकाले गए, यूएस को कहा जा रहा है कि अब उनको लें। उस सिलसिले में ये मुलाकातें अब हो रही हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा तो है कि हम रेफ्यूजीज और माइग्रेशन के इश्यूज को पाकिस्तान के साथ मिलकर हल करेंगे, और ये जो मिस नॉज है ये पॉइंट पर्सन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। इन दोनों के बीच में आज पाकिस्तान और अमरीका के बीच में यही बातें हुई हैं, और वो कहती हैं जी कि ना सिर्फ पाकिस्तान ऑफिशियल्स बल्कि जो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ भी मेरी मुलाकातें हुई हैं, हम कमिटेड हैं, यूएस कमिटेड है प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड और रीसेटलमेंट के लिए जो एलिजिबल अफगान्स हैं उनके लिए, और उनको हम यूएस में बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है प्रोसेस एक्सेलरेट किया जा सकता है, और इसी सिलसिले में वो यहां पे। अब पाकिस्तान साइड से जब मीडिया ने पूछा कि भाई आपको इस सिलसिले में क्या कहना है कि क्या वाकई मिस नोएज आई हुई है और उनके साथ आपकी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की है, तो लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज पीएमएलएन और पीएमएलक्यू के बीच में के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मुलाकातें हुई, और पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो पीएमएलक्यू के जो हैं हेड हैं चौधरी शुजात साहब, उनकी आज रेजिडेंस के ऊपर लाहौर में उन्होंने मुलाकातें की हैं, और नवाज शरीफ साहब भी थे इसमें। 15 साल में पहली बार वो उनसे मिल रहे हैं। 40 मिनट की ये मीटिंग रही। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राणा सनाउल्ला, अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़ थे, और चौधरी साहब की तरफ से उनके जो हैं बच्चे चौधरी वजात, सालिक और शाफे, वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि अब हम सीट शेयरिंग पे काम करेंगे, 2 नेशनल असेम्बली की सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की जाएगी और 3 पंजाब असेंबली में, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने उनकी हेल्थ के बारे में पूछा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज रिजेक्ट की है इमरान खान साहब की जो रिक्वेस्ट थी टू विदड्रॉ अपील अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्डिक्ट अबाउट हिज डिसक्वालिफिकेशन इन तोशाखाना केस, और अक्टूबर 28 लास्ट ईयर इमरान खान ने यह मूव किया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अगेंस्ट दिस डिसीजन, और उन्होंने कहा था कि इसको विदड्रॉ करें, और यह इन्होंने कहा था जनवरी 18, 2023 में, लेकिन वो कहते थे कि ये जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं ये पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गवर्नमेंट सॉरी कोर्ट का डिसीजन देते हुए कहा, जो कि उन्होंने रिजर्व किया था सितंबर 13 को, कि मैं सारी पार्टियों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो है इसके ऊपर फैसला दूंगा। अक्टूबर 21, 2022 में ईसीपी के 5 मेंबर बेंच ने इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया था फॉल्स स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन देने के लिए, और जो है उस सिलसिले में इन्होंने अपील की थी, और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया है। जेयूआईएफ के जो चीफ हैं माजिद भाई के बड़े जो है फेवरेट मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो एक रैली कर रहे थे लड़काना के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शंस होएं लेकिन बहुत ही पीसफुल एनवायरमेंट में होना चाहिए, ताकि जो वोटर्स हैं वो पहुंच सकें और वहां पे अपना वोट का हक दे सकें। अब इसके ऊपर पीपीपी जो है उसको बड़ी हैरत है। पीपीपी के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं जी कि मौलाना साहब के इस बयान पर हम बड़ा हैरान है, उनकी गवर्नमेंट है केपी के अंदर और हमें कुछ आइडिया नहीं है कि उनका क्या मतलब है कि जी फीजिबल एनवायरमेंट होना चाहिए। फीजिबल एनवायरमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ही फीजिबल बनाना है, और लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे कुछ लोग, उन्होंने मौलाना साहब का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग शायद जो हैं पब्लिक का मैंडेट लेने से डर रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो ना होए, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनको जो पब्लिक का मैंडेट है उसको मानना ही पड़ेगा और पब्लिक के सामने आना ही पड़ेगा, इसलिए ही पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, इलेक्शंस वक्त के ऊपर होने चाहिए। आज जनाब फेडरल गवर्नमेंट ने बेतहाशा बड़ा जो है फैसला किया, और ये बड़ा फैसला उन्होंने खुद जिगरा नहीं दिखाया, ये आईएमएफ की कंडीशंस थी जिसमें कि उनको कहा गया था कि जो आपने बेतहाशा सब्सिडीज दी हुई हैं और फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप बांटते फिरते हैं अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, उनको जो है आप खत्म करें। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि अब बिल्कुल कोई भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 एंड अबव से उनको नहीं दी जाएंगी। इन पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ से जो ऑफर पहले की जा रही थी, वो कहते हैं जी कि उसके बदले में इनको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे जो इनकी सैलरी में बढ़ा दिए जाएंगे। ये डिसीजन जो है इन इफेक्ट है फ्रॉम December 1st इस साल के, और इसका फैसला जो था कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने किया था October 26 को। आज इसके ऊपर बात करते हुए जो थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है, उसने कहा कि ये सारा जो देते थे फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्री पावर यूनिट्स एडमिसिबल टू एम्प्लॉयज ऑफ वापडा, फॉर्मर वापडा कंपनीज, जनरल पावर जनरेशन कंपनीज, ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनीज, पावर आईटी कंपनीज, इन सब के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स खुद से दो, गवर्नमेंट नहीं देगी। मतलब है देखो जरा अन्नी चुकी हुई है एक गरीब मुल्क दे विच के जी तुहानू तुहाडे कोलों पैसे ही नहीं लेने हैं
फ्री
असी, हाँ फ्री जी, वाह जी वाह क्या बात है। मतलब है ये तो आपने किंगडम बनाई हुई है, शेखडम बल्कि बनाई हुई है। हिंदुस्तान के अंदर आज लोकसभा में बड़ी गर्मा गर्मी रही, उसकी वजह यह थी कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनको सारे का सारा इल्जाम दिया कश्मीर के डिस्प्यूट के ऊपर। आज ये बात कर रहे थे और डिबेट हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर, जो कि बाद में लोकसभा में पास भी किया गया, लेकिन जिस वक्त ये नेहरू साहब के ऊपर एतराज कर रहे थे तो अपोजिशन ने वॉकआउट किया था और जो है उनको इनकी बातें जो अच्छी नहीं लगी, जिसका बाद में फिर उन्होंने जवाब दिया। इसके ऊपर बात करते हुए अमित शाह साहब ने कहा कि नेहरू साहब ने ये जो कुछ भी किया था उसके ऊपर उनको बड़ा खेद था, यानी कि बड़ा अफसोस था। उन्होंने एक लेटर जो शेख अब्दुल्ला को लिखा था और वो लेटर जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी आर्काइव्स के अंदर है, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसी की वजह से 70 ईयर से ये मसला जो है चलता आ रहा है। अलबत्ता मोदी गवर्नमेंट जो है उसने इनसे इनके साथ जो कुछ भी कश्मीर में किया उससे जो है बहुत सुधार आया। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, जिसमें कि इसको जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, और सबकी तरह अब इनको भी डील किया जाएगा। इसके अलावा बिटवीन 2014 से 2023 में सिर्फ 2197 टेरर अटैक्स हुए हैं, कंपेयर टू 7217 बिटवीन 2004 एंड 14 एंड 40164 बिटवीन 1994 से 2004, जो कि 70% ड्रॉप इन टेररिज्म केसेस है। बाय 2026 जीरो टेरर प्लान जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, अमित शाह साहब का कहना था, क्योंकि वो कहते हैं जी कि 2024 में भी बीजेपी जीत के आएगी। जिस बात का जिक्र कर रहे थे ये और जिसके ऊपर ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया वो ये था, उन्होंने कहा जी कि नेहरू साहब अगर 1948 का सीज फायर सिर्फ 3 दिन के लिए डिले कर जाते तो यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है यह भी हिंदुस्तान का हिस्सा होता। उन्होंने जो लेटर लिखा था अब्दुल्ला को, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं यूनाइटेड नेशंस में जो जा रहा हूं एक अच्छे फेथ में ये डिसीजन कर रहा हूं ताकि सीज फायर होए, लेकिन ये चीजें प्रॉपरली बैठी नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक की, यानी कि नेहरू साहब ने अब्दुल्ला साहब को कहा कि मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक की, तो अगर ये मिस्टेक्स नेहरू साहब ना करते तो पूरे का पूरा कश्मीर आज हमारे पास होता। इसके ऊपर अपोजिशन भड़क गई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इंडिया के पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने तो पाकिस्तान को के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को यह कहा था कि हम तुमको कश्मीर दे सकते हैं अगर तुम हिंदुस्तान को हैदराबाद दे दो। तो नेहरू जो हैं उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट जो थी कश्मीर की, उसकी वजह से आज कश्मीर हमारे साथ है। तो आप नेहरू को कैसे जो है इसके ऊपर कंडेम कर सकते हैं, है जी, बड़ी आज मारामारी चली फिर उठे, ठीक है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर साइक्लोन मिचंग आ गया है, जिसकी के वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनके रनवेज जो हैं उन तक के अंदर बेतहाशा पानी आ गया है, नी हाई वाटर है, हर जगह पे क्लॉग्ड है और लोगों के घरों में बिजनेसेस में आ गया है। यहां तक कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ताइवान का जो फॉक्सकॉन है और पेगाट्रॉन का एप्पल आई का जो आईफोन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये सब के सब जो है शट डाउन कर दिए गए हैं टेम्परेरली। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं मेजर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स जो हैं चेन्नई के अंदर, वो सब के सब बंद किए गए हैं। इतनी बेताशा यहां पे बारिश हो रही है और पावर आउटरेज है। और यहां पे अथॉरिटीज ने कहा है कि भई आप लोग घरों के अंदर रहें, बाहर अननेसेसरीली ना निकलें, और एक हाई अलर्ट पे हैं दोनों ही स्टेट्स। थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं उनको निकाला गया है और फिशरमैन जो हैं उनको, यानी मछेरे, उनको कहा गया है कि बिला वजह आप जाके मच्छी पकड़ने के लिए मत जाओ समुद्रों में। आज यहां पे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बैंक सब क्लोज रहे और लग रहा है कि अगले भी कुछ दिन जो हैं ये क्लोज रहेंगे। और उसमें काफी डेथ्स भी की भी रिपोर्ट आ रही है। तो भाई अल्लाह खैर करे, जो है इट्स नॉट रियली गुड साइन। और जनाब शाहरुख खान साहब ने आज एक अनदर सेशन किया आस्क एसआरके, और उसके अंदर कुछ लोग उनसे भड़क गए हैं जी। कुछ लोगों ने तो बड़ा प्यार दिखाया और कुछ लोगों ने बड़े भड़क गए। वो कहते हैं जी कि शाहरुख खान साहब आपकी ये जो बकवास घटिया किस्म की दो फिल्में थी पठान और जवान, इसका सारे का सारा इसको चलाने का सेरा जो है आपकी बड़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट पीआर टीम जो है उसके ऊपर है कि उन्होंने आपकी ये दो बैड फिल्म्स की भी इतनी जबरदस्त पीआर की कि वो ये चली। तो आपको लगता है कि आपकी यही वाली पीआर टीम आपकी ये जो बकवास फिल्म डंकी है उसको भी सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर बना सकेगी? तो किंग खान तो जो है वो भड़क गए इसके ऊपर। उन्होंने कहा वैसे तो नॉर्मली मैं इस तरह के जो आपकी तरह के अमेजिंगली इंटेलिजेंट लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आंसर नहीं करता, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग एन एक्सेप्शन और मैं जो है अपनी पीआर टीम को बताने वाला हूं कि आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट चाहिए, तो इसलिए मैं उनको कहूंगा कि वो आपको गोल्डन मेडिसिन भेजें ताकि आप जो है बेटर फील करें, ठीक है जी। और जनाब बहुत अरसे से जो फैंस थे वो अक्षय कुमार साहब को कहते थे कि अक्षय कुमार साहब बैक टू बैक फिल्में मत लाया करो, इसीलिए आपकी फिल्में जो हैं वो हो जाती हैं फ्लॉप और वो चलती नहीं है। जैसे कि आपकी फिल्म आई थी बच्चन पांडे सम्राट, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली, राम सेतु, ये सब की सब जो हैं ये रही थी फ्लॉप। तो आप छः छः महीने का गैप दिया करो, हर छः महीने के बाद अपनी एक फिल्म जो है वो किया करो, रिलीज किया करो। तो अब लग रहा है कि जैसे अक्षय कुमार साहब ने अपने फैंस की बात सुन ली है और अब इनकी जो फिल्म थी जिसका कि बड़ा ही लोगों को इंतजार था, बड़े मियां छोटे मियां, जिसके जिसमें कि इनके साथ टाइगर श्रॉफ भी थे, वो अब ये रिलीज करेंगे अप्रैल 2025 में, एग्जैक्टली सिक्स मंथ्स आफ्टर मिशन रानीगंज। तो अब यानी के साल में इनकी सिर्फ दो ही फिल्में आया करेंगी और वो कहते हैं कि जी ये जो क्लस्टर वाकई हो जाता था जैसे कि 2022 में हुआ था, तो फिल्में जो थी वो फिर सही नहीं चली थी, उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया था, तो अब ये हर छह महीने के बाद एक फिल्म लेकर आएंगे। टाइम मैगजीन ने आज जो टॉप सेंसेशन है टेलर स्विफ्ट 33 ईयर्स की हैं, उनको पर्सन ऑफ ईयर फॉर 2023 कहा है। उन्होंने कहा जी कि इनको बेतहाशा सक्सेस मिली है और उनका जो अब कवर है उसके ऊपर टेलर स्विफ्ट आपको नजर आ सकती हैं। वो कहते हैं जी कि इनका एरिस टूर जो था बे इंतहा जो है सक्सेसफुल गया था और उसके बाद इनका जो अब कॉन्सर्ट फिल्म है इनकी जो उसके ऊपर भी लोगों के बड़े रेव रिव्यूज आए हैं, तो उसकी वजह से इसके इससे पहले स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप आर्टिस्ट ऑफ 2023 का भी क्राउन इन्होंने जीता था और इस साल जो है 2023 में यानी कि मोस्ट streamed artist thi Taylor Swift.
She has become billionaire. Just to let you know. She has become...
Baji di ja kaisi PR kariye? Baji ke sanu apni PR team de vich rakho.
No, no. She has become billionaire now.
I know. She's a billionaire. Of course, Bhaijan. जाहिर है। और जनाब पीसीबी ने आज दिया अपडेट हमारे जो मुन्ने मियां हैं पेसर हमारे नसीम शाह उनके ऊपर और उन्होंने कहा जी कि उनकी हेल्थ अब बेटर है। आपको पता ही है कि इनका शोल्डर इंजर हो गया था एशिया कप के बीच में और राइट आर्म बॉलर हैं लेकिन बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं और फिर ये अपनी सर्जरी कराने के लिए यूके में अक्टूबर में गए थे और आज पीसीबी ने कहा कि ये अपने फाइनल स्टेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन हैं और ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में आज नजर आए। वो कहते हैं जी कि ये सर्जरी के लिए जब यूके दो महीने में रिहैबिलिटेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए थे तो पीसीबी ने इनके सारे मेडिकल कॉस्ट उठाए थे और अब एक पूरी एक्सपर्ट मेडिकल टीम है जो इनके साथ काम कर रही है। आज देखा गया कि ये लाइट जिम एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे और हल्की हल्की बॉलिंग की भी एक्सरसाइज इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है और ये कल से बैटिंग की प्रैक्टिस भी अब शुरू करेंगे। और जनाब पीसीबी ने बेज इंतहा जबरदस्त अपनी तरफ से एक डील बनाई है शहीद बेनजीर भुट्टो विमेंस यूनिवर्सिटी के लिए ताकि पिशावर के अंदर विमेंस क्रिकेट जो है इसको प्रमोट किया जा सके। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि केपी के अंदर हम विमेन क्रिकेट जो है उसका टैलेंट टैप करना चाहते हैं और इस रीजन के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा टाई अप हुआ है उसकी वजह से उसका जो ग्राउंड है पीसीबी यूज करेगा और फिर यहां पे हौले हौले क्रिकेट अकेडमी भी बनाने की कोशिश की जाएगी विमेन क्रिकेट के लिए ताकि औरतें जो हैं वो भी इस खेल में हिस्सा ले सकें। इंडिया के जो बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं जादेजा जिनको कि आपको पता ही है रोप इन किया गया था अफगानिस्तान ने की टीम के लिए और अफगानिस्तान ने अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने जो परफॉर्मेंस भी दिखाई थी और आपको पता ही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान को हराया था ओडीआई के जो चल रहा था हिंदुस्तान में उसके अंदर। उस सिलसिले में आज इनसे एक सवाल किया गया जादेजा साहब से, उन्होंने कहा जी कि सर क्या आप पाकिस्तान की भी कोचिंग करोगे, तो ये हंस पड़े। उन्होंने कहा जी आई एम रेडी। अब ये मजाक था कि मजाक नहीं था, बहरहाल जी लोग जो हैं बड़ा अब हैरान हो रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं आई एम रेडी, वो कहते हैं जी कि मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने अफगान्स को सिखाया और मुझे पता है कि पाकिस्तान की टीम भी समवट लाइक दिस थी पहले कि एक दूसरे के साथ ये बात कर सकते थे, एक दूसरे के मुंह पे इनकी गलतियां बता सकते थे, अब मुझे पता नहीं है कि माहौल कैसा है लेकिन मैं इनको कोच करने को तैयार हूं।
वाओ,
अब ये मजाक है कि क्या, क्योंकि हंस रहे थे।
मजाक नहीं,
मजाक नहीं था, सीरियस था। अच्छा चलो ठीक है। एंड जनाब लायनल मेसी 36 इयर्स ओल्ड एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड एज द टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023 और इनकी भी तस्वीर जो है मैगजीन के कवर पे डाली जाएगी। आपको पता ही है कि उन्होंने बेशुमार जो हैं वो ट्रॉफीज जीती हैं और जो वर्ल्ड फुटबॉल है उसके अंदर बड़ी इनकी जो है देन है और ये जो फुटबॉल को लेकर आए थे यूएसए के अंदर ही जब से इन्होंने ज्वाइन किया है इंटर मियामी को, तो उसके लिए इनको बड़ा सलाम पेश किया गया। ये जो इंटरव्यू टाइम मैगजीन ने इनसे लिया है उसके अंदर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की कि इन्होंने एफसी बार्सिलोना जो है उसको क्यों छोड़ा और सऊदी अरेबिया की जो बहुत ही स्टनिंग किस्म की जो इनको ऑफर थी और प्रपोजल था उसको भी इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया
yeah.
क्यों किया, उसके ऊपर सारी इन्होंने बातें की हैं। तो अब जब ये आएगा मैगजीन तो आप पढ़ सकते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, बहुत सारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंटरनेशनल फेडरेशन के, स्पोर्ट्स फेडरेशन के और नेशनल ओलंपिक कमिटीज जो हैं बहुत सारे कंट्रीज के, उन्होंने आज IOC यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक और जो कमेटी है उसको कहा है कि भाई रशिया और बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से आउट मत करें। 2024 में जो पेरिस गेम्स हो रही हैं यानी कि पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके अंदर अंडर न्यूट्रल फ्लैग इनको आप खेलने दें। और जो एथलीट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी कहा जी कि हमको इस इशू के ऊपर क्लैरिटी चाहिए। IOC ने कहा जी कि हम अपनी फाइनल रूलिंग जो है वो आपको बाद में देंगे जिस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। तो आज लोगों ने पूछा कि भाई वो अप्रोप्रिएट टाइम कभी आ रहा है, क्योंकि समर में ये गेम्स होंगी तो हमको पता चलना चाहिए कि क्या आप उनको खेलने देंगे या नहीं, ताकि वो लड़के लड़कियां जो हैं तैयारी शुरू करें।
एंड दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नॉट वन बट टू डेंटिस्ट डॉक्टर मुजीब काजी, हमारे आपके डेंटिस्ट, 39 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन, क्वींस एंड रदरफोर्ड के कॉर्नर पर। दूसरी लोकेशन की क्राइसलर एंड विलियम्स पार्क के कॉर्नर पर। आपके भी बच्चों के दांतों में कोई खराबी है तो डॉक्टर मुजीब काजी 9054578661। ईस्ट एंड में रहते हो, कहीं पर भी ईस्ट एंड में आप, तो हम आपको कहते हैं कि भाई आप जाइए डॉक्टर पद्माजा रानी के पास। डॉक्टर पद्माजा हमारी डेंटिस्ट इन ईस्ट एंड, 3410 शेपर्ड एवेन्यू, शेपर्ड एंड वार्डन, राइट एट द कॉर्नर ऑफ शेपर्ड एंड वार्डन आपको मिलेंगी डॉक्टर पद्माजा। 4162997466 इनका फोन नंबर है। हेयर मैक्स के कान सही करा ले अपने, दांत तो सही करा लिए अपने, और तो हेयर मैक्स के जनाब शिराज कहते हैं कि अगर आपके कानों में, आपके या आपके घर में किसी के भी कानों में सुनने में कमी हो गई हो या कमी हो रही हो तो आप हेयर मैक्स से शिराज से कांटेक्ट करें। आपका हियरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा साजो आवाज का हवाला देने पर। 4167928792 जनाब इनका फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और किसका बताएं हम आपको कि सब हमारे और आपके, अगर आपको गाड़ी की इंश्योरेंस चाहिए हो तो गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए आप जा सकते हैं किसके पास,
राजा बादशाह।
चले राजा बादशाह के पास चले जाइए।
अच्छा।
राजा बादशाह का नंबर भी दे दीजिए आप, तो आपको राजा बादशाह का है तो
हाँ। दो गाड़ियां, वो कहते हैं ना दो गाड़ियां और एक घर है अगर आपके पास, हाँ। तो आप जो है वो उनको कॉल कर लें 6472903773
गाड़ियों की या घरों की इंश्योरेंस के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते।
अच्छा
हैं।
अच्छा भाई, आप बताते रहते हैं हर वक्त कि जी अगर आपका जो है कोई कानों का मसला है, कोई आपका दांतों का मसला है, आप इस डॉक्टर के पास जाएं, तो जिसका दिमाग खराब हो उस दिमाग के डॉक्टर का कोई आपके, या जिसके दिल के मामलात हो, जिसको प्यार हो जाए आपकी तरह जैसे,
अच्छा।
तो दिल का डॉक्टर कोई नहीं है आपके पास?
है, बहुत है, बहुत है।
अच्छा।
हाँ, दिलों के दिल फेक डॉक्टर भी है
और दिमाग
दिमाग फेक डॉक्टर भी है।
अच्छा,
तो
अच्छा।
आप
प्लीज उनके भी नंबर दिया,
हमसे कॉन्टेक्ट करें,
कॉन्टेक्ट करें
फिर आपको बताएंगे कहाँ जाना है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक।
एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोना टेक यू टू मानी, ले जाएंगे। ये थी हमारी आज की न्यूज। शादी जी थैंक यू सो
मच,
इंशाल्लाह ताला।
अब गुजर गया ना महीने का आखिर गुजर गया है, अब मैं बीमार नहीं हो सकती ना, मैं सिर्फ महीने के आखिर में बीमार होती हूँ।
चलिए साहब, सुन लेते हैं हम इनकी बात, कल फिर मुझसे तो मुलाकात होगी आपकी। शाजा जी इंसिस्ट कर रही है उनसे भी मुलाकात होगी, तो चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ओके,
थैंक यू। अब मैं आपके लिए चलता हूँ आज जीशान अहमद की जानिब, जहां से वो आपको आप सुन सकेंगे क्या चीज, प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद। बकिया की बातें कल इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।
तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारे निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं। तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे।
करने लगे आपके
हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई आपकी धड़कनों में उतरने लगे प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे भी रहा ख्वाबों में खो गए जुल्फों तले हम चैन से बाहों में सो गए आपको देख के आहे भरने लगे आपको देख के आहे भरने लगे इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई आपकी धड़कनों में उतरने लगे प्यार से प्यार हम अब तो करने लगे
बंधन दिलों का टूटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं,
तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना
दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर, दिल मेरे ना और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर,
दिल मेरे
love you like crazy, I want you like crazy, जिसे रात दिन मैं पढ़ता रहा, मेरी वो कहानी है तू।
मैंने तेरी बातों पे यकीन कर लिया, बाहों की बलाओं में तुझे भर लिया, आजा जा कहती है, जा कहती है, मुझ पे जा
love you like crazy, I want you like crazy, तुझे पलकों में छुपा के रखूं, आ जा महबूबा तू मेरा एतबार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर।
I love you like crazy, want you like crazy,
I love you like crazy, I want you.
like crazy.